खुदा उनके मुकद्दस और पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। हम बाइबल मुकद्दस में से उन अहकामात पर और उन हिस्सों पर गौर कर रहे हैं जहां पर लफ्ज एक दूसरे आपस में, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को और एक दूसरे की तरबियत और नसीहत के जो हुक्म हैं उन पर गौर कर रहे हैं। इसको कहा जाता है बाइबल मुकद्दस में एक दूसरे के अहकाम, जो कलीसिया में ईमानदार एक दूसरे के साथ रवैया या किस तरह रूहानी तौर पर पेश आना है। सो गलतियों के नाम पालूस रसूल का खत, अच्छा उसका छठा बाप उसकी पहली आयत में पालूस रसूल कहता है, ऐ भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिल्म मजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रखो, कहीं कहीं तुम भी आजमाइश में ना पड़ जाओ। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। पस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत। क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वालों को सब अच्छी बातों में शरीक करे। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल जब गलतियों की कलीसिया को लिखता है तो हर एक बाब में, पहले बाब में वो उनको नसीहत करता है, उनको याद दिलाता है कि तुमने मसीह की वो खुशखबरी सुनी जो मुझे खुदा की तरफ से मिली और तुम उसे बहुत जल्द भूल गए। दूसरे बाब में वो पतरस और दूसरे तमाम रसूलों को अपने बारे में बयान करता है कि मसीह की सलीब के बगैर हम क्या हैं, बेमायनी है, हमारी जिंदगी अधूरी है, हमारी रास्तबाजी किसी भी काम की नहीं। और इसीलिए वो कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और फिर तीसरे बाब में वो कलीसिया को उनकी गलती याद दिलाता है कि किसने तुम पर अफसून कर दिया। अफसून से मुराद यानी कि किसने तुमको बेवकूफ बना दिया या तुम पर जादू कर दिया। लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है, तुम पर अफसून कर दिया, तुमको बेवकूफ बना दिया, कि तुमने मसीह को अपनी आंखों से सलीब पर मसलूब होते देखा और अब तुम उस काम को, उस जिंदगी को जो तुमने ईमान से शुरू की थी, अब जिस्मानी कामों से खत्म करना चाहते हो। दूसरे लफ्जों में कलीसिया में कुछ लोग आए और उन्होंने कहना कहना शुरू किया कि मसीह की जो सलीब पर यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है वो काफी नहीं। वो आकर कहने लगे कि उस कुर्बानी के साथ तुम्हें शरीयत के कुछ अहकाम हैं जिनको पूरा करना होगा ताकि तुमको निजात मिले। इसलिए पालूस रसूल उनको कहता है कि ऐ नादान गलतियों, तुम पर किसने अफसून कर दिया कि तुम रूह के तौर से ईमान से शुरू करके अब काम से और जिस्मानी बातों से इस दौड़ को खत्म करना चाहते हो। और तुम बेकार बातों में मसलूब, बेकार बातों में फंस गए। और चौथे बाब में फिर वो उनको बयान करता है कि हम इब्राहिम के वसीला से खुदावन खुदा में वो मेरास रखते हैं, इसीलिए हमें गुलाम नहीं कहा गया बल्कि बेटे कहा गया है। और पांचवें बाब में वो कहता है गुलामी के जुए में ना जुटो, खुदावन यीशु मसीह ने आजाद किया है, आजाद रहो। इसीलिए वो पांचवा बाब बयान करके कहता है रूह के माफिक चलो, रूहुल कुद्दस को सुनो, रूहुल कुद्दस को सुनोगे तो जिस्म के कामों को हरगिज पूरा ना करो। जब हम रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में चलेंगे तो हमारी जिंदगियों में फल कौन सा लगेगा? माफी, मोहब्बत, एक दूसरे के बारे में फिक्र। और जब हम अपनी रूह की रहनुमाई, जिसे कहते हैं जिस्मानी फिक्र में, जिसे गुना आलूदा फितरत या हमारी पुरानी फितरत कहा गया है, अगर हम उसकी रहनुमाई में चलेंगे तो हमें माफी नहीं होगी, हमें सुलह नहीं होगी, हम एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के लिए दुआ नहीं करेंगे। तो इन तमाम बातों को कहने के बाद छठे बाब में पालूस कहता है ऐ भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो, रूहानी यानी कि रूह की रहनुमाई में चलने वाले लोग, रूह से मामूर लोग, रूह को सुनने वाले, रूह को अपने मददगार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले, तुम जो रूहानी हो उसको कोई भी भाई है, कोई भी बहन है, अगर वो किसी कसूर में पकड़ी जाए तो हमें, यीशु मसीह का वो वाक्य याद आता है कि जब फरीसी और तमाम रब्बी एक औरत को चौक में लेकर आ गए और कहना शुरू किया कि मूसा ने कहा था कि जो कोई जनाकारी में पकड़ा जाए उसे संसार किया जाए, खुदावंद यीशु तू क्या कहता है? सबने पत्थर उठा लिए, याद है आपको वो वाक्य? और यीशु मसीह जमीन पर बैठा और उसने जमीन पर कुछ लिखा, अंदाजा लगाया जाता है कि वो इस्तिस्ना की किताब में से हवाला था कि जिसने गुनाह नहीं किया वही उसे पत्थर मारे, लेकिन पक्का नहीं पता। और यीशु मसीह ने जमीन पर कुछ लिखा और खड़े होकर कहा कि जिसने कोई गुनाह नहीं किया वही पहला पत्थर इसे मारे, और सब चले गए। तो यहाँ पर पालूस रसूल कहता है कि तुम जो रूहानी हो, हमें वो फरीसी नहीं बनना जब कोई नाकाम हो, हमें वो रब्बी नहीं बनना कि हाँ हाँ इसने ये गुनाह किया है इसलिए मैं इस गुनाह से पाक हूं, आओ इसको कुचल डालें, आओ इसको तबाह करें। तो हमें एक दूसरे के साथ कैसे पेश होना है? हम जो रूहानी यानी कि उस वक्त रूह में मामूर, रूह में जिंदगी बसर कर रहे हैं और किसी ने जिस्मानी तौर पर गलत काम किया है तो उसे बजाय के उसके ऊपर चढ़ जाना, उसे उठा करने की जरूरत है। हमें उस बाप की तरह रवैया अपनाने की जरूरत है जो मुसर बेटे की कहानी का बाप है, जो हमारा बाप है। मुसर बेटे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया, और जब उसने तोबा की वापस आया, जब उसने अपने दिल ही में ये बात मान ली कि मैंने अपने बाप का गुनाह किया है, आसमान की नज़र में और अपने बाप की नज़र में गुनाहगार हुआ, तो उसके बाप ने क्या किया? उसे माफ कर दिया। तो हम यहाँ से ये रवैया लेते हैं कि तुम जो रूहानी हो उसको हिल्म मजाजी से यानी कि हलीमी के रवैया से, खाकसारी के रवैया से क्या करें? बहाल करो, बहाल करो। बहाल का लफ्ज जिसे जब हम देखते हैं कि जबूर तेई में लिखा है खुदावन मेरा चुपान है मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। लफ्ज बहाल जब इस्तेमाल किया जाता है चरवाहों की जुबान में, उस भेड़ के लिए जो घायल हो चुकी है, उस भेड़ के लिए जिसे भेड़िए ने काट लिया है और चरवाहे ने बचा लिया है, हो सकता है उसका जख्म नासूर बन रहा हो, तो उस पर क्या लगाया जाए? मरहम लगाया जाए। बहाल करना, किसी को दोबारा फिर खड़ा करना, सो हम ईमानदारों को क्या कहा गया है कि हलीमी से क्या करें, एक दूसरे को बहाल करें, या खासकर वो जो गुनाह में मुब्तला है, और अपना भी ख्याल रखें कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। बहाल करते करते, किसी की रहनुमाई करते करते, हमें कैसा रवैया रखना है कि हलीमी के साथ उस बंदे की सलाहकारी करनी है। अगर कोई शादीशुदा जोड़ा है तो उनकी एक वक्त की गलती को देखकर उनकी तरबियत करनी है। खुदावन कहता है माफ करो, ना कि बार बार पुरानी गलती को जो की किया इसे 4 साल पहले दुहराई करना। आपने 4 साल पहले ये किया था, याद है आपको? सो पालूस रसूल कहता है अपना भी ख्याल रखो कहीं तुम भी आजमाइश में ना पड़ जाओ। हो सकता है कि हम आजमाइश में पड़े उन पर लान तान करने के लिए, जज बनने के लिए जिसे कहते हैं, उनके ऐप निकालना शुरू कर दें। हमें क्या कहा गया है? बहाल करने के लिए, ऐप निकालने के लिए नहीं कहा गया, माफ करने के लिए उनको दोबारा खुदावंत की तरफ लाने के लिए। याद है आपको जब यीशु मसीह ने मरने से पहले, सलीब पर जान देने से पहले, मुर्दों में से जी उठने से पहले, शागिर्दों पर जाहिर होने से पहले पतरस को क्या कहा था? मेरे साथ देखें इस हवाला को, यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब। यूहन्ना की इंजील में वहां पर भी एक दूसरे के साथ जो हमें करना है, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे के बर्दाश्त करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, वो तमाम सच्चाइयां वहां पर नजर आती हैं। जब हम 13 बाप उसकी 36वीं आयत को लेते हैं, तो यहां पर यीशु मसीह और पा शमौन के दरमियान क्या चल रही है? बातचीत चल रही है। शमौन पतरस ने उससे कहा, खुदावन यीशु से, ऐ खुदावन तू कहाँ जाता है? यीशु ने जवाब दिया, जहां मैं जाता हूं अब तू तो मेरे पीछे नहीं आ सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। यीशु मसीह जानता था कि पतरस एक दफा बरगश्ता होगा, गुमराह होगा, मेरी राहों को छोड़ेगा और फिर मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता, मैं तो तेरे लिए अपनी जान दूंगा। यीशु ने जवाब दिया, तू मेरे लिए अपनी जान देगा? क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? सवाल किया यीशु मसीह ने। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। बहुत दफा हम यहां पर पढ़कर रुक जाते हैं, लेकिन आगे क्या कहा खुदावन ने पतरस को? तुम्हारा दिल ना घबराए। तो यहां पर खुदावन यीशु मसीह किससे मुखातब है? पतरस से। तुम्हारा दिल ना घबराए, और तमाम वहां पर शिगिर्द मौजूद हैं, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। और फिल्म में एक सीन दिखाया गया है जो पैशन ऑफ क्राइस्ट हम देखेंगे आने वाले अयाम में, जब पतरस खुदावन्द यीशु मसीह का इनकार कर चुका है, और यीशु मसीह जब उसे हैकल से बाहर लेकर जा रहे हैं, और वहां पर एक सीन है कि यीशु और पतरस ने एक दूसरे को, उस फिल्म में जो सीन दिखाया गया है, चंद लम्हों के लिए आंखों ही आंखों में देखा, और पतरस को वो बात याद आई। और बहुत से उल्मा का और उस फिल्म बनाने वाले का जो मकसद था उस सीन को दिखाने का, मेल गिब्सन ने ये फिल्म बनाई है, जो अंग्रेजी फिल्मों का एक्टर है, उसने ये फिल्म बनाई, तो उसकी सोच भी थी, क्या थी? जब उसने ये सीन दिखाया तो वहां पर क्या किया गया? पतरस को बहाल किया गया, या क्या कह सकते हैं, मुजरमाना तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने तर्स और रहम से और मोहब्बत से उस पर निगाह, उसे आंखों आंखों में क्या किया? बहाल किया। सो पतरस से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए। और हम इंसान होते हुए जब गुनाह करते हैं तो खुदा से भागते हैं, ये हमारी फितरती बात है, ये बात हमें आदम से मिली है, ऐसा ही है जी? जब हम गुनाह करते हैं हमारी आदत क्या होनी चाहिए, हम खुदा के पास आए, लेकिन क्या करते हैं, हम खुदा से दूर भागते हैं। जैसे आदम ने किया, गुनाह किया, वो खुदा से दूर भागा। जैसे काइन ने गुनाह किया, अपने बेटे अपने भाई को कत्ल किया, वो खुदा के पास आने के बजाय खुदा से दूर दूर नजर आता है। और फिर बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि गुनाह करते हैं तो खुदा से दूर भागते हैं। याद रखें, खुदा गुनाहगार से मोहब्बत रखता है लेकिन गुनाह से नफरत करता है। इसलिए हम ईमानदारों को हलीमी से बहाल करना है, हलीमी से बहाल करना है। जब हम पतरस की जिंदगी को देखते हैं, तो जब यीशु मसीह दोबारा मुर्दों में से जी उठने के बाद उनको झील पर चलता हुआ नजर आया और उनसे कहा कि मुझे मछली खाने को दो, तो ये वो वाक्या था जहां पर पतरस बिल्कुल दिलगीर हो चुका था। और यहां तक कहा जाता है कि पतरस ने अपना दोबारा पेशा फिर शुरू कर दिया था, वो उस बात को भूल चुका था कि छोड़ो, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो आदमगीर की बजाय फिर मछेरे बन गए। और लिखा है कि वहां पर यूहन्ना की झील उसके 20वें बाप में वो मछली पकड़ रहे हैं, वो खे रहे हैं और मछली हाथ नहीं आ रही। और यीशु मसीह ने वही बात जो शुरुआत से उनसे कही थी कि मैं हूं, वही बात कही, वही तमाम वाकया दरहाया गया ताकि उनको याद दिलाया जाए कि मैं तुमको बहाल करने के लिए आया हूं। तो पतरस दिलगीर है, पतरस अपना दिल छोड़ चुका है। हो सकता है कि यहां तक कह सकते हैं कि उस इनकार के बाद जो 3 दफा कहा गया है, बहुत से उलमा का यह नतीजा निकलता है कि पतरस मुकम्मल तौर पर कहता था कि अब मैं अपना काम दोबारा करूंगा। तो यीशु मसीह ने आकर जैसे उन्हें 3 बार इनकार किया, फिर 3 बार उसने क्या कहा, पतरस क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है। पतरस क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है, हाँ खुदा। वहां पर गुनाहों की लिस्ट तो नहीं यीशु मसीह ने निकाली, नहीं। तो यीशु मसीह हमारी लिस्ट नहीं निकालता। ठीक उस तरह औरत के लिए तुझ पर किसी ने अल्जाम नहीं लगाया जा, मैं भी तुझ पर अल्जाम नहीं लगाता, दोबारा गुनाह ना करना। पतरस से क्या कहा गया, मेरे बर्रों को चुरा, मेरी भेड़ों को चुरा, मेरे बर्रों की निगाहबानी कर। यीशु मसीह ने उसकी लिस्ट नहीं निकाली। इसलिए हम ईमानदारों को अपना भी ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आजमाइश में पड़ जाएं। जब हम किसी को बहाल करें तो उसके पुराने गुनाहों का खाता ना खोलें, बल्कि कहें कि यीशु मसीह माफ करता है और वो चाहता है कि हम इस गुनाह को दोबारा ना करें। इसलिए कहा है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ। सब मेरे साथ ये शायद को कहें, गलतियों 6वां बाब उसकी 2 आयत, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत
को
पूरा करो। एक दूसरे का बोझ उठाओ। हम सब ईमानदारों के लिए ये हुक्म है कि हम एक दूसरे का बोझ उठाएं, एक दूसरे की देखभाल करें। हमें ऐसी कलीसिया बनना है, हमें ऐसी कलीसिया बनना है जो इब्तदाई कलीसिया थी। जल्द हम तमाम ईमानदारों को पहुंचना और तलब करना चाहते हैं ताकि हम ऐसी कलीसिया बने जो इब्तदाई कलीसिया की जिंदगी उनकी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में नजर आए, ना कि हम ऐसी कलीसिया बने कि साल में एक दफा खुदा के हजूर हाजिर हों, ना कि हम ऐसी कलीसिया बने जैसे हम मुख्तलिफ कलीसियाओं में जा रहे हैं और हम देखते हैं उनके हालात के पासबान और कलीसिया में उनके दरमियान क्या रिश्ता है, और देखते हैं कि जो लोग पढ़े हुए हैं वो बाइबल मुकद्दस से कुछ रफाकत नहीं रखते। हमें वैसी कलीसिया नहीं बनना, बल्कि ऐसी कलीसिया बनना कि हमें अपनी बाइबल मुकद्दस से वाकिफ हो। इसलिए आप नहीं चाहते कि आप मेरे लिए और मैं आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनूं, और या हम सब किसी दूसरे पासबान के लिए कि वो आकर कहे कि पासबान और तमाम टीम दूसरी जगहों पर जाकर इतना कलाम सुनाते हैं, यहाँ पर भी सुनाते हैं, लेकिन लोग क्यों सुस्त हैं? ये तमाम नौजवानों को, बुजुर्गों को इकट्ठा किया जाएगा, बहनों को नहीं, सिर्फ सिर्फ कामदों को, भाइयों को, जिनमें हम बातचीत यही करेंगे कि हमें वैसी कलीसिया बनना है कि हम एक दूसरे का भार उठाने वाले बने, एक दूसरे का भार उठाने वाले बने। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम खेल खेल रहे हैं अपने साथ भी और खुदावन के साथ भी। और इसके लिए पालूस रसूल कहता है, फरेब ना खाओ, हमें अपने आप को फरेब में नहीं उतरना, और ना ही हमें खुदा को ठट्ठों में उड़ाना है, बल्कि पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत से खुदा, अपने खुदा से मोहब्बत करनी है। सो हमें एक दूसरे का बोझ उठाना है, एक दूसरे का भार उठाना है, यूं हम मसीह की शरीयत को पूरा करेंगे। तो जल्द हम इकट्ठे होंगे और बातचीत करेंगे अपनी कलीसिया की हालत पर, कि माओं पे क्या जिम्मेदारी है, कि बच्चे सिर्फ स्कूल ही में ना भेजें, बल्कि उनके लिए जो क्लास शुरू की जाए उसमें हर एक बेटे बेटी के लिए लाजमी हो कि अगर वो पढ़ सकता है तो वो बाइबल मुकद्दस की क्लास में शामिल हो। माएँ जो नहीं पढ़ सकती, कलीसिया में से कोई बहन जो पढ़ी लिखी है, एक है, दो है, तीन है, जिम्मेदारी ले, वो उनको बाइबल पढ़ाए। और यहाँ तक हमने बात की है, कल हमने जो लात लोगों के देखे गांव में जो पढ़ नहीं सकते, आपने देखा होगा ये 300 350 रुपए का पेप्सी का डब्बा है जिसमें टेप बनी हुई है, चैनल ने टेप बनाई है, उसमें कार्ड पड़ता है और आप उसमें कितने मर्जी गीत सुन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि घरों में वो डब्बा दिया जाए, अगर खुदा मुमकिन करे तो उस डब्बे में बाइबल मुकद्दस हो, ताकि किसी को बिजली की फिक्र ना हो, बजाय के तावलादे सड़े सड़े गीत गान नालों, बजाय के राई दे टप्पे गान नालों, बजाय के तावलादे ते बजाय ते अपना कहते कि यार हलवार दे या दूसरे नसीबो दे ते अपना कहते कि नूरा लाल दे ते बथेरिया दे गीत छड़ के की गाइए असी मसीही गीत। ते बाइबल अपने घर सुनने वाले बनी है, रोटियां पकाते भी बाइबल सुनिए, ते ये उन्होंने तैयार की जानी है जेडे पढ़ नहीं सकते। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕਲੀਸੀਆ ਬਣਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕਲੀਸੀਆ ਬਣੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਤੁਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਾ ਭਾਰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਯੂੰ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਜੋ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਸੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪਰ ਅਮਲ ਕੀਆ। ਆਏ ਹਮ ਖੁਦਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨ ਸੱਚਾਈਓ ਪਰ, यसु मसीह के रवैये पर, अपने रवैये पर गौर व फिक्र करें कि एक दूसरे का भार उठाएं, ताकि हम जो रूहानी हैं, हम जो समझदार हैं, रूह में ज़िंदगी बसर करते हैं, रूह के मुआफिक ज़िंदगी गुजारने वाले बने।